लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसियाई समुदाय उन युवा लोगों की इच्छाओं और आशंकाओं का स्वागत करें जो पौरोहित्य और धार्मिक जीवन में यीशु मसीह के मिशन की सेवा करने की बुलाहट महसूस करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टीन चैपल पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। जुबली वर्ष में रोम के विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जानने के क्रम में आज हम सिस्टीन चैपल के बारे जानेंगे। सिस्टीन चैपल दुनिया के सबसे आकर्षक प्रार्थनालयों में से एक है। वैटिकन में अक्सर सिस्टीन चैपल को देखने वालों की लंबी कतारें देखी जाती हैं। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करें कि सिस्टीन चैपल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। वैटिकन के केंद्र में स्थित सिस्टीन चैपल धार्मिक और कलात्मक भव्यता का शिखर है। यह न केवल रोम की बहुमूल्य विरासत की आधारशिला है, बल्कि मानवीय प्रतिभा का एक उत्कृष्ट नमूना भी है, जो प्रतिदिन लगभग 25,000 पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस तरह पर्यटकों की भीड़ के कारण सिस्टीन चैपल की एंट्री काफी चुनौतीपूर्ण होती है। सिस्टीन चैपल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, इतिहास की कुछ सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलात्मक अभिव्यक्तियों का संग्रह भी है। चाहे किसी की आध्यात्मिक रुचि कुछ भी हो, वैटिकन और सिस्टीन चैपल की सैर एक आकर्षक आभा से भर देती है। माइकलांजेलो द्वारा 1508 से 1512 के बीच चित्रित प्रतिष्ठित छत भित्ति चित्र कलाकार की अद्वितीय कुशलता एवं दूरदर्शिता के प्रमाण है। पोप सिक्स्तुस चतुर्थ ने 15वीं शताब्दी में इस चैपल का निर्माण कराया था। यही कारण है कि इसका नाम सिक्सटीन चैपल पड़ा। चैपल का असली आकर्षण इसकी छत में है, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में माइकलांजेलो ने चित्रित किया था। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला भित्ति चित्र 800 वर्ग मीटर में फैला है, जो बेजोड़ भव्यता और कलात्मक सुंदरता के साथ बाइबल की महत्वपूर्ण कहानियों को दर्शाता है। भित्ति चित्र में नू की कहानी से लेकर अंधेरे से प्रकाश को अलग करने को दर्शाने वाले चित्र और आदम की सृष्टि का प्रतिष्ठित चित्रण शामिल है, जहां ईश्वर पहले मानव में जीवन डालते हैं। हालांकि सिस्टीन चैपल की नींव पोप सिक्स्तुस चतुर्थ के संरक्षण में रखी गई थी, लेकिन कलाकृति का निर्माण पोप जूलियस द्वितीय के समय में किया गया। इस परियोजना में उस युग के बेहतरीन कलाकारों की प्रतिभा का उपयोग किया गया। माइकलांजेलो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार थे। वे न केवल एक मूर्तिकार थे, बल्कि एक चित्रकार, वास्तुकार और कवि भी थे। वे एक बेहद कुशल इंजीनियर भी थे। पोप जूलियस द्वितीय कला के महान संरक्षक होने के कारण माइकलांजेलो के उत्कृष्ट काम में उनकी गहरी रुचि थी। 1508 में पोप जूलियस द्वितीय ने माइकलांजेलो को सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित करने का काम सौंपा। पोप जूलियस द्वितीय चाहते थे कि सिस्टीन चैपल में एक भव्य और प्रभावशाली कलाकृति हो, जो कैथोलिक कलीसिया की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करे। वे जानते थे कि माइकलांजेलो इस काम को करने के लिए उपयुक्त कलाकार थे, इसलिए उन्होंने माइकलांजेलो को चैपल की छत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजी किया। माइकलांजेलो को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 4 साल लगे। इस दौरान उन्हें गर्दन और पीठ में दर्द एवं अस्थायी अंधेपन की समस्या से जूझना पड़ा। यह सब लंबे समय तक छत पर काम करने के तनाव के कारण हुआ। हालांकि सिस्टीन चैपल के साथ अक्सर माइकलांजेलो को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें कई नामी कलाकारों का सहयोग रहा है, जैसे सांद्रो बोटिचेली, डोमेनिको घिरालैंडो, पियेत्रो पेरोजिनो और बाद में रफाइल जैसे पुनर्जागरण कालीन कलाकार रहे हैं। वैटिकन के स्मारक इमारत सिस्टीन चैपल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है जो यरूशलेम में प्राचीन सोलोमन मंदिर के आयामों को दर्शाता है। एक ऐसा पवित्र स्थल जिसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व यहूदी ख्रिस्ती संस्कृति के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। यह प्राचीन मंदिर जिसका 70 ईस्वी में पतन हुआ था, सिस्टीन चैपल के प्रभावशाली मापों के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है जो अतीत और वर्तमान को गहराई से जोड़ता है। सिस्टीन चैपल को अब तक की सबसे महान कलाकृतियों में से एक माना जाता है तथा यह आगंतुकों के लिए प्रेरणा और विस्मय का स्रोत बना हुआ है। माइकलांजेलो की छत पर बनी पेंटिंग में दिखाई गई कहानियां और आकृतियां खास तौर पर पुराने व्यवस्थान से ली गई हैं। लेकिन सिस्टीन चैपल की दीवारों के आसपास पुनर्जागरण के अन्य कलाकारों के द्वारा चित्रित अतिरिक्त भित्ति चित्रों की एक बड़ी संख्या है, जिनमें से बहुत सारे नए नियम के दृश्यों को भी दर्शाते हैं, जिनमें यीशु का जीवन भी शामिल है। इस प्रकार सिस्टीन चैपल में पूरे बाइबल को दर्शाया गया है। चित्रों के बारे में एक और अटकल लगाई गई है कि सिबिल्स की आकृतियां, जो उनके साथ मौजूद नबी के विपरीत बाइबल से नहीं बल्कि शास्त्रीय पौराणिक कथाओं से हैं, भले ही महिलाएं मूर्ति पूजक प्रतीक हैं, माइकलांजेलो ने उन्हें शामिल किया है क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने एक उद्धारकर्ता के जन्म की भविष्यवाणी की थी, जिसे यीशु के आने की प्राचीन भविष्यवाणियों के रूप में व्याख्या की जाती है। माइकलांजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल की छत पर पेंटिंग पूरी करने के बाद से 500 साल बीत चुके हैं। इस कला में कुछ टूट फूट भी हुई है। 1797 में पास के बारूद के गोदाम में हुए विस्फोट से भित्ति चित्र का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया था, जिससे जल प्रलय को दर्शाने वाले पैनल को आंशिक नुकसान हुआ था। संरक्षणकर्ता यह भी चेतावनी देते हैं कि हर दिन वैटिकन संग्रहालय में आने वाले हजारों आगंतुकों के कारण भित्ति चित्रों को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि कुल मिलाकर पेंटिंग को उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है, फिर भी इसकी देखरेख करने की जरूरत है। सिस्टीन चैपल समय से परे सौंदर्य को व्यक्त करने की मानवीय क्षमता का उदाहरण है, जिसका प्रयोग शुरू में पोप की राजसभा के समारोहों के लिए किया जाता था, जिसमें शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लेते थे। 1878 से सिस्टीन चैपल कॉन्क्लेव का स्थान बना, जो नए पोप का चुनाव करने वाली सभा है। कार्डिनल नए पोप का चुनाव करने के लिए सिस्टीन चैपल में इकट्ठे होते हैं। अंतिम कॉन्क्लेव 2013 में हुआ था, जब पोप बेनेडिक्ट 16वें के इस्तीफे के बाद पोप फ्रांसिस चुने गए थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि सिस्टीन चैपल कैथोलिक कलीसिया के जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि कला दुनिया में प्रभु के मार्ग का एक ठोस संकेत है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टीन चैपल पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है। मंदिर में मैं आऊं, तू मिलता है। तेरे आसन के पास आऊं, कृपा मिलती है। तेरे चरणों के पास बैठूं, शांति मिलती है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका प्यारी माँ। लेखक है संदीप दुबे। श्रोताओं, माता पिता बनना एक सुखद अनुभव है। जो दंपति माता पिता बनते हैं, उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिनमें सबसे खास है अपने बच्चे की देखभाल करना। यदि माता पिता दोनों ही ऑफिस या बाहर काम करने वाले हों, तो ये जिम्मेदारी थोड़ी कठिन हो जाती है। अपने बच्चे की देखभाल के लिए सबसे अच्छा उपाय है बच्चे के दादा दादी या नाना नानी, इनकी उपस्थिति में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं और बिना किसी चिंता के अपने काम पर जा सकते हैं। पर अगर घर पर कोई नहीं है तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। बच्चा उस माहौल में अपने को एडजस्ट कर पाया तो अच्छी बात है, पर अगर बच्चा प्ले स्कूल नहीं जाना चाहता और वहाँ नहीं जाने की जिद करता है, गुस्सा करता है, जिद्दी बन जाता है, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए या डांट डपट कर मार पीट कर उसे स्कूल नहीं भेजना चाहिए। बच्चे के मन में बचपन से ही भय या चिंता भर देंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर उसकी जिंदगी बहुत आनंदमय होगी। जैसा वातावरण आप बच्चों को उपलब्ध कराएंगे, आगे चलकर वे वैसा ही उदाहरण दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है आपको बच्चे के लिए ज्यादा समय देना पड़े। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है संदीप दुबे की लिखी नाटिका प्यारी माँ।
अरे देवा 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 देवा, मैम साहब, आज चिंटू बाबा ने बहुत परेशान किया।
क्यों चिंटू, क्या बात है? क्यों परेशान किया? क्या बात है मेरे बच्चे?
देखा मैम साहब, इसका गुस्सा, बाबा रे बाबा।
बेटा, आज आपने माँ को प्यार नहीं किया?
नहीं करूँगा।
क्यों बेटे, आप हमसे नाराज हैं क्या?
हाँ।
लेकिन क्यों?
मैं माँ, मैं टॉफी लूँगा।
नहीं बेटे, टॉफी से दांत खराब हो जाते हैं और खांसी आने लगती है ना।
फिर बिस्किट दिला दो।
हाँ बिस्किट ले लो। कमली, ये लो पैसे और एक पैकेट बिस्किट लेके आ जाओ। बेटा, जूते मुझे उतार कर, चलो अब लेट जाओ।
माँ, कल मैं वहां नहीं जाऊंगा।
कहाँ?
वहीं जहाँ रोज तुम मुझे छोड़ देती हो। मैं सारा दिन तुम्हारे पास रहूंगा।
मेरे बच्चे, आप नहीं जाओगे तो फिर मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी?
मत जाओ।
फिर मेरी नौकरी नहीं छूट जाएगी?
छूट जाने दो, लेकिन कल मैं वहां नहीं जाऊंगा।
ठीक है, मत जाना।
प्रॉमिस?
हाँ देखूंगी। चलो अब तुम सो जाओ।
मैम साहब, ये लीजिए बिस्कुट।
सरिता, आज मैं बेहद खुश हूँ।
क्या बात है अजय?
तुम्हें नौकरी मिल गई है सरिता।
क्या? लेकिन अभी इतनी जल्दी क्या थी?
क्या कह रही हो, नौकरी कहीं पेड़ों पर लगती है कि जब चाहो तोड़ लो? मिलती हुई नौकरी छोड़ना बेवकूफी है, सोचो एक बार।
लेकिन अजय, मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती हूँ। चिंटू अभी कितना छोटा है, जरा जरा सोचो भला, मैं उसे घर में अकेले किसके पास छोड़कर जाऊंगी ऐसे में?
ओहो, अब तुम इसकी चिंता मत करो।
क्यों ना करूं? चिंटू जब तक बड़ा नहीं हो जाता, मैं घर के बाहर जाकर नौकरी करने की सोच भी नहीं सकती हूँ।
कैसी पागलों जैसी बातें करती हो तुम।
नहीं अजय, तुम कुछ भी कहो, मैं चिंटू को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे।
मेरी बात सुनो, आजकल कितने क्रश खुल गए, वहाँ नौकरी पेशा औरतें अपने बच्चों को सुबह छोड़ जाती हैं और शाम को वापस ले जाती हैं।
नहीं, मैं अपने बच्चे को अजनबी हाथों में मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ऐसे।
ओफो सरिता, चिंटू वहाँ अकेला थोड़े ही रहेगा, वहाँ तो 3-4 महीने तक के बच्चे लोग छोड़ जाते हैं। क्या उन्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं होता?
लेकिन
क्या? चिंटू को तैयार करो, हम आज ही उसके लिए कोई क्रश तलाशेंगे। देखना, 4-5 दिन में ही वह वहां के बच्चों के साथ हिल मुल जाएगा। अब जल्दी भी करो, क्या सोच रही हो सरिता, तैयार करो उसे।
बाय बाय बेटा।
नहीं पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ।
बेटे,
बच्चे, हम आपको शाम को लेने आ जाएंगे। हाँ
नहीं माँ, नहीं माँ।
अरे सरिता, अब चलो भी, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है सरता, आज बड़ी थकी थकी सी लग रही।
नहीं, ऐसे ही कुछ। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ।
चिंटू क्या कर रहा है?
सो रहा है।
इस समय सो रहा है?
हाँ, शायद दोपहर में सोया नहीं होगा। सुनो, आज चिंटू बहुत परेशान था और उसने गुस्से में मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। बहुत गुमसुम और गंभीर दिखाई दे रहा था वो।
क्यों?
कह रहा था कि मुझे क्रश में अच्छा नहीं लगता, मैं घर पर ही रहूंगा। देखो, दरअसल वो चाहता है कि मैं सारा दिन उसके पास रहूं। और
देखो, तुम ही खुद उससे चिपकी रहना चाहती हो। अब तुमको ही सोचना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं।
क्या कह रहे हो? मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। फिर तुम्हारी तरह निर्दयी भी नहीं हूँ, समझे ना?
शांत शांत, गुस्सा शांत करो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो सरता। इसके अलावा और कोई हल है हमारे पास? खैर छोड़ो।
चिंटू बेटा उठो, देखो सुबह के 7 बज चुके हैं। जल्दी उठो, मुझे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। और तुम्हें क्रिश भी छोड़ना है ना मुझे, उठो।
मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। बगल वाली आंटी को देखो, सारा दिन घर में ही रहती हैं। बबलू को वह हमेशा अपने पास रखती हैं, और तुम मुझे हमेशा दूसरों के पास छोड़ देती हो। तुम गंदी माँ हो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा।
हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे।
नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। आया डांटती रहती है। कल मेरी निक्कर खराब हो गई थी, मैंने जानबूझकर थोड़ी खराब की थी ना।
हम आया को डांट देंगे। चलो अब जल्दी उठो, देर हो रही है बेटा। चलो जूते मोजे पहनो, उठो।
मैं यही लेटा रहूंगा।
चिंटू अब जल्दी उठ जा बेटा, वरना पापा बहुत गुस्सा हो जाएंगे।
होने दो।
अरे भाई क्या बात है, कितनी देर लगाओगी सरता?
अरे बस 2 मिनट में आई। देख अब जल्दी उठ जा चिंटू, नहीं तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। उठ।
नहीं उठूंगा।
नहीं उठेगा?
नहीं 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 नहीं, नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, मैं यही रहूंगा।
अब उठेगा कि लगाऊं 2-4 थप्पड़?
अरे सुना नहीं, मैंने कहा जल्दी आओ।
नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
क्या क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है?
हाँ बिल्कुल सही है। अजय, हमने उसे पैदा करके उस पर कोई एहसान नहीं किया है, अपने सुख और अपनी खुशियों के लिए उसे जन्म दिया है। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसकी खुशियों का और उसके सुख का ध्यान रखें? अजय, मैं घर पर ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि अभी से उसके दिल में माँ बाप के प्रति नफरत की चिंगारी पैदा हो जाए। और फिर माँ बाप का प्यार पाना उसका हक है। मैं नहीं चाहती कि उसके कोमल मन मस्तिष्क पर कोई गांठ पड़े। मैं उतने पैसे में ही काम चला लूंगी जितना तुम्हें मिलता है। पर चिंटू को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। अजय,
तो तुम्हें नहीं जाना?
नहीं, मैं चिंटू को लेकर घर जा रही हूँ।
प्यारी माँ, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, पूजा केलकर, संदीप दुबे और मास्टर संकल्प। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।